नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज के पाठ का हमारा विषय है रीतिकाल का परिवेश और पृष्ठभूमि। रीतिकाल का समय सन 1650 से 1850 के बीच माना गया है। रीतिकाल का साहित्य अपने पूर्व के भक्तिकाल से पूर्णतः हटकर था। साहित्य रचना की भावभूमि पूरी तरह बदल गई थी। साहित्य की विषय वस्तु व उसके सौंदर्य संबंधी तमाम पक्षों में भारी बदलाव हुआ। भक्तिकालीन साहित्य की सामाजिकता और लोक जीवन की अभिव्यक्ति सिरे से गायब हो गई। साहित्य पटल पर स्थापित हुई आश्रयदाताओं की प्रशस्तियां, विलासिता वैभव, युद्धों और नायिका भेद के चमत्कारिक वर्णन और काव्यांगों पर काव्य की रीति का निर्वाह। साहित्य में आए इस बदलाव के आधार तत्कालीन परिवेश में थे। ऐतिहासिक दृष्टि से शाहजहां के शासन के समाप्त होने से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शासन के बीच का समय है। यह वह समय है जब मुगल राज्य विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा था और आकार की दृष्टि से सबसे छोटा। औरंगजेब के शासन की सीमाएं सबसे विस्तृत थी। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली तक रह गए थे और बहादुर शाह जफर तो अपने किले के ही बादशाह थे। यह समय मुगलों के वैभव के अवसान एवं अंग्रेजों का उदय काल है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता टूटने लगी और सामंतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। सामंत बादशाहों की तरह दिखने के लिए उनकी जीवन पद्धति का अनुकरण करने लगे। अपनी हैसियत से अधिक वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने लगे। उनकी दमित कामवासना का जैसे विस्फोट हो गया था। सैकड़ों नारियां सामंतों के हर्मों का अंग बना दी गई। विलासी सामंत शासकों में विलासिता की प्रवृत्ति सातवें आसमान पर थी। रसिकता शासकों का प्रमुख गुण हो गया था और नारी इसका उपकरण। सुरा सुंदरी में डूबे रहने के उपक्रम करते रहना सामंती शासकों का जीवन लक्ष्य हो गया था। नारी भोग की वस्तु में तब्दील हो गई थी। विलास उपकरणों का संग्रह तथा सुरा सुराही की साधना ही सामंतों का नित्य कर्म बन चुका था। शासन तंत्र निरंकुश और शोषणकारी हो गया था। अपने वैभव को बनाए रखने के लिए प्रजा को ही लूटता था। विलासिता में डूबे राजाओं को देखते हुए अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे लुटेरों ने आक्रमण कर दिए। अंग्रेजों का शासन भी स्थापित हो गया। सामाजिक दृष्टि से यह घोर पतन का युग था। सामंतवादी शक्तियों का वर्चस्व था जिसका असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आम जन पर पड़ रहा था। इस सामंतवादी व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह या उसके मनसबदार अमीर उमरा थे। सत्तासीन लोग अपने से उच्च लोगों को खुश करने और निम्न वर्ग का शोषण में ही अपने जीवन की सफलता मानते थे। इस काल में समाज के हर पक्ष पर सामंती संस्कृति का व्यापक प्रभाव था। जमींदार सबसे शक्तिशाली वर्ग था। जमीन की पैदावार, लगान का निर्धारण और उसे वसूलने का कार्य जमींदार के हाथों में था। केंद्रीय शासन का जमींदार वर्ग पर नियंत्रण कम हो रहा था। ये कहना भी अनुचित नहीं है कि केंद्रीय शासन पूरी तरह उस पर निर्भर हो गया था। जब तक केंद्रीय शासन किसानों पर जमींदारों के अत्याचारों को रोक लगाने में समर्थ रहा और किसानों के प्रति उसका व्यवहार संवेदनशील रहा तो उसे किसानों का सहयोग मिलता रहा। ज्यों ही केंद्रीय शासन जमींदारों की लगाम कसने में असमर्थ हुआ तो किसानों ने भी सहयोग देना बंद कर दिया। जमींदारों के अत्याचारों से किसान त्रस्त थे। इस युग में किसानों के विद्रोह हुए। सतनामी संप्रदाय का विद्रोह उल्लेखनीय है। श्रमजीवी कृषक और व्यापारी जी तोड़ मेहनत करके जीविका कमाते थे। सत्ता व उससे संबद्ध वर्ग उसकी कमाई हड़प जाते थे। लगातार युद्धों व राजसी विलास के लिए भारी करों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। सामंत समस्त संसाधनों का उपयोग भोग विलास के लिए करते थे। वे उत्पादनों के साधन के सुधार और वृद्धि के प्रति उदासीन थे। हिंदू और मुसलमान शासक वर्ग में संघर्ष राजनीतिक स्वार्थों के कारण होता था, न कि धार्मिक मान्यताओं के। शिवाजी और औरंगजेब में राज्य को लेकर संघर्ष रहा। उनका राजनीतिक संघर्ष कभी भी धर्म युद्ध में तब्दील नहीं हुआ था। शिवाजी की सेना में बहुत अधिक पठान मुसलमान थे। उनका व्यक्तिगत सचिव मौलवी हैदर अली खान था, जो कि औरंगजेब और मुगल अधिकारियों के साथ शिवाजी के गोपनीय पत्राचार को देखता था। शिवाजी का मुख्य तोपची भी इब्राहिम गर्दी खान था। शिवाजी के सेनापति दौलत खान और सिद्दीक मिस्री दोनों मुसलमान थे। औरंगजेब ने जब शिवाजी को आगरा की जेल में कैद कर लिया था, तो उनको वहां से निकालने वाला मदानी मेहतर नाम का व्यक्ति मुसलमान था। हिंदू और मुस्लिम राजा के बीच कलह था, तो उसका कारण राजनीतिक था, न कि धार्मिक। शासकों की परस्पर शत्रुता थी, लेकिन धर्म के आधार पर प्रजा से भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों उनकी प्रजा थे। दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहत छाती, बाढ़ी मर्जाद जस हृदय हिंदुआने की, काढ़ गई रैयत के मन की कसक सब। शिवाजी ने अपने सिपाहियों को सख्त आदेश दे रखे थे कि लड़ाई या लूट के माल में मस्जिद, कुरान और नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। एक बार उन्होंने लूट के माल में कुरान की प्रति देखी तो वे अपने सिपाहियों पर नाराज हो गए। आखिरकार कुरान की प्रति उसके घर पहुंचा दी गई, जिसके घर से लेकर आए थे। सामाजिक स्तर पर जमींदार, अमीर या राजा की वेशभूषा, रहन सहन में कोई अंतर नहीं था, लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। धर्म यहाँ साधन के तौर पर प्रयोग हो रहा था, न कि साध्य के तौर पर। सांस्कृतिक स्तर पर उपासना व पूजा पद्धतियों को छोड़कर हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं रह गया था। बसंत के मेले, दशहरा, होली, दिवाली आदि त्योहारों में उतने ही जोश से मुसलमान भाग लेते थे जितने कि हिंदू। ग्रामीण जीवन में तो किसी भी कारण से धार्मिक संघर्ष दिखाई नहीं देता। यहाँ कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हिंदू और मुसलमान यहाँ घुल मिलकर एकम एक हो गए थे। साहित्य की रचना अपने परिवेश में ही होती है। इस समय का साहित्य का अधिकांश भाग स्थानीय राजाओं के दरबारों में रचा गया। दरबारों के परिवेश का साहित्य रचना पर गहरा असर पड़ा। इस काल के साहित्य में सामंतों के दरबारों का परिवेश परिलक्षित होता है। बड़े बड़े राजा या जमींदार अपने को स्वायत्त शासक समझते थे और किसी से कम मानने को तैयार नहीं थे। यही प्रवृत्ति साहित्यकारों में थी। जिस तरह प्रदर्शन प्रियता, अलंकारिकता की प्रवृत्ति शासकों में थी, कविता भी अलंकारों के बोझ से दब गई थी। कवि अपनी आजीविका के लिए शासन तंत्र पर निर्भर थे। उनकी कला अपने आश्रयदाता की रुचि की दासी हो गई। रसिकता और विलासिता में ही शासकों का मन रुचता था। लोक जीवन के दुखों, तकलीफों, आशाओं, आकांक्षाओं को अपने साहित्य की विषय वस्तु न बनाकर राजाओं की रुचियों को साहित्य में स्थान दिया। पद्माकर ने राज दरबार के परिवेश का वर्णन करते हुए लिखा है, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनिजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। कहे पद्माकर जो गजक है गिजा है, सजी सेज हैं, सुराही हैं, सुरा है और प्याले हैं। शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन हैं, जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं। तान तुक ताला हैं, विनोद के रसाला हैं, सुबाला हैं, दुसाला हैं, विशाला चित्रशाला हैं। ऋतकाल के कवि देव ने भी राज दरबारों का वर्णन किया है, उससे भी यहाँ के परिवेश के बारे में सहज ही अनुमान हो जाएगा। साहेब अंध, मुसाहेब मूक, सभा बहरी, रंग रीज को माच्यो, भूल्यो तहाँ भटक्यो भट ओघट, बुढ़ीबे को कर्म न बाच्यो, भेष न सूझ्यो, कहो समझायो न, बतायो सुनो न कहा रुचि राच्यो। दरबारों का परिवेश काव्य पर हावी था। राज दरबार में एक तरफ तो कवियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा थी, जिस कारण अपनी कविता में विद्वत्ता और शास्त्रीयता को दर्शाते थे। दूसरे, दरबार का परिवेश और सामंतों की रुचियां थी, जो रसिक थे उनका मन श्रृंगार में रुचता था। यह परिवेश साहित्य रचना की दिशा तय कर रहा था। साहित्यिक भाषा के तौर पर उर्दू इसी दौरान विकसित हुई। शिक्षितों के लिए उर्दू साहित्य सृजन का मुख्य माध्यम बनी। इस समय के अधिकांश अमीर उमरा जमींदार शेर व शायरी को समझते थे और न समझने वालों को असभ्य माना जाता था। इसीलिए दरबारों में शायरों को संरक्षण दिया जाता था। काव्य कला, चित्रकला आदि कलाओं को इस युग में उचित संरक्षण मिला, जिसके कारण इनमें आया विकास। भारतीय साहित्य व संस्कृति में दिए जाने वाले योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुगल वंश चित्रकला का प्रेमी था। बाबर और हुमायूं ने चित्रकारों को आश्रय दिया था और अकबर स्वयं एक चित्रकार था। उसने भारतीय और ईरानी चित्रकला के समन्वय का प्रयास किया, जो अकबर कला कहलाई। जहांगीर के स्वयं चित्रकार और चित्रकला के ज्ञाता होने के कारण उसने चित्रकला को विकसित करने में योगदान दिया। यद्यपि शाहजहां वास्तुकला का प्रेमी था, फिर भी उसके समय में चित्रकला को उचित आश्रय व प्रोत्साहन मिला था। स्थापत्य कला रीतिकाल से पूर्व अपने उत्कर्ष पर थी। अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी व आगरा के किलों का निर्माण हुआ। शाहजहां ने स्थापत्य कला को प्रतिष्ठित करने में विशेष रुचि ली और दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद व ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां के पश्चात कला पतनोन्मुख होने लगी, क्योंकि औरंगजेब ने कला प्रेमी न होने के कारण इस कला को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि चित्रकार भिन्न भिन्न राज्यों में गए और स्थानीय जीवन से चित्रकला के जुड़ने से उसमें नई नई विषय वस्तु और शैलियां विकसित हुई। चंबा, भंसोली व अन्य पहाड़ी राज्यों में अनुपम चित्र मिले। रामधारी सिंह दिनकर ने रीतिकाल के परिवेश और उससे उपजी कविता के बारे में लिखा है कि रीतिकाल के कवियों की निंदा उस समाज की निंदा है जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। कविता आकाश से नहीं टपकती, वह समकालीन समाज के भीतर से उत्पन्न होती है और उस पर उस समाज के रसिकों की रुचि की भी पूरी छाप होती है। कविता लिखने वालों की भावदशा और प्रवृत्ति बहुत कुछ वैसी ही होती है जैसी उन लोगों की जो प्रत्येक युग में कविताएं सुना करते हैं। रीतिकाल के कवियों ने कविता के जिन गुणों पर जोर दिया है, उस काल के पाठकों की दृष्टि में वे ही गुण कविता के सबसे बड़े मूल्य रहे होंगे। शब्दों की सजावट, यमक और श्लेष का चमत्कार, दूर की कोड़ी लाने वाली निगूढ़ कल्पनाएं, अतिशयोक्ति और हास्यवाद प्रशस्तियां, नारी के एक एक अंग को अनेक उपमाओं के दर्पण में अलग अलग दिखाने का आग्रह और प्रत्येक कवित्व एवं सवैये में पहली तीन पंक्तियों में जैसी तैसी तैयारी और उक्ति की सारी बेधकता को समेटकर चौथी पंक्ति में केंद्रित कर देने का प्रयत्न, ये सब बातें रितिकाल के पाठकों को बहुत पसंद रही होंगी। अन्यथा हम उस काल के कवियों में कविता को इन गुणों से सजाने का इतना सचेष्ट प्रयास नहीं देखते। रितिकाल के साहित्य की श्रृंगार प्रधानता व स्त्री के मांसल चित्रों के कारण खूब आलोचना हुई। रितिकाल के कवि ठाकुर ने ही इस साहित्य के मूल चरित्र की तीखी आलोचना करते हुए एक पद लिखा, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जसो प्रताप को कहानो है, सीख लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेरु और कुबेर गुरु आनो है, ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूल कहूँ बांधियत बानो है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, कवित कीनो खेल करी जान्यो है। उनका कहना था कि कवियों ने लक्षण ग्रंथों से नेत्रों के लिए मीन मृग खंजन कमल आदि उपमानों का प्रयोग सीख लिए हैं। काव्य रचना करना कठिन कार्य है, इन कवियों में इसकी योग्यता नहीं है। इन्होंने काव्य रचना को आसान काम और साधारण खेल समझा है। रितिकाल पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे नालियों में बहा देने योग्य बताया। यह आरोप सही नहीं जचता, क्योंकि रितिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का चित्रण किया है। श्रृंगार रस पर कविता लिखना किसी भी तरह से अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता। भारतीय साहित्य में नकसिक वर्णन, संयोग श्रृंगार के, स्त्री पुरुष के, काम क्रीड़ा के चित्रों की परंपरा संस्कृत में रही है। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कृति मानव शरीर है, उसका वर्णन करना अश्लीलता की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। यह नैतिक आग्रह और स्थूल दृष्टि का प्रभाव था कि इस साहित्य को इस तरह से पढ़ा गया। रितिकाल के साहित्य पर जिस प्रश्न पर खूब विचार हुआ है वह है कवियों का आचार्यत्व। रितिकाल के साहित्य में रीति केंद्र में है, रीति से अभिप्राय है, रस अलंकार आदि काव्य के अंगों को काव्य रचना का विषय बनाकर काव्य में उसके लक्षण अथवा गुणों को स्पष्ट करना और उन लक्षणों अथवा गुणों की काव्य में सिद्धि करना। चूंकि ये कवि काव्य के सिद्धांतों पर कविता रचना करते हैं, इसलिए इन्हें आचार्य कवि भी कहा गया है। कवि कर्म का क्षेत्र काव्य सृजन है, तो आचार्य का काम काव्य सिद्धांत निरूपण। संस्कृत में सिद्धांत निर्माण का कार्य आचार्य करते थे, लेकिन रीतिकालीन दरबारों के विशेषज्ञता बहुज्ञता के पांडित्य प्रदर्शन के प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में आचार्य का कार्य भी कवि कर रहे थे। रितिकाल का दरबारी परिवेश गंभीर मंथन के अनुकूल नहीं था, बल्कि वहाँ केवल पांडित्य प्रदर्शन का बोलबाला था। इसलिए रितिकाल के आचार्य कवियों ने मौलिक काव्य सिद्धांतों की स्थापना नहीं की। संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं और उन लक्षणों को अपनी भाषा में अनुवाद के रूप में कविता रचना कर दी। संस्कृत भाषा में काव्यशास्त्र और श्रृंगार साहित्य की समृद्ध परंपरा थी। संस्कृत के रसमंजरी, रस तरंगिनी, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श ग्रंथों ने रीतिकाल में हिंदी कविता को व्यापक तौर पर प्रभावित किया। दरबारी परिवेश में संस्कृत के विचारशील आचार्यों से प्रेरणा लेकर कुछ नया करने का अवसर न था, इसलिए कलाबाजी और चमत्कार प्रदर्शन की परंपरा से अपना नाता जोड़ा। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य सिद्धांतों पर विचार करते हुए आचार्यों ने अलंकार, रस, रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति पर विशेष चर्चा की, लेकिन हिंदी के कवियों ने अलंकार को ही मुख्य आधार बनाया, क्योंकि इन कवियों को रसिक प्रवृत्ति के अपने आश्रयदाताओं को खुश करना था। इसलिए नायिका के भेदों, उपभेदों तथा उनकी सूक्ष्म श्रृंगारिक मनस्थितियों के वर्णनों में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा पाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इससे कविता को नुकसान हुआ है। इस संबंध में उन्होंने लिखा कि कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित या सवैया लिखना। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी ना हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। रीतिकाल की कविता को लेकर हिंदी आलोचना में विवाद रहा है। इसका कारण है कि हिंदी कविता अपने जन्म से ही समाज के साथ गहरे से संबद्ध रही है। रीतिकाल की कविता में समाज से आंतरिक लगाव, जुड़ाव नज़र नहीं आता, इसीलिए इसकी घोर आलोचना हुई। रीतिकाल के कवियों के पास कविता के लिए पूरा समय था। उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग इसके कलागत पक्ष पर लगाया। उसके इस पहलू के महत्व को उद्घाटित करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि रीतिकाल की चाहे जितनी निंदा की जाए, किंतु इतना माने बिना नहीं चल सकता कि यह वह काल है जबकि हिंदी के कवियों ने पहले पहल यह अनुभव किया कि वे कलाकार हैं और कला के पीछे अभ्यास युक्त साधना का होना आवश्यक है। रीतिकाल के कवियों ने जीवन को छोड़ दिया था, किंतु सजावट और मजावट में वे इतने पटु निकले कि साहित्य में सबसे अधिक साफ तस्वीरें उन्होंने तैयार की। आज आलोचना में चित्रकारी की महिमा सबसे ऊपर मानी जा रही है। अगर यही कसौटी रीतिकाल पर लगाएं तो रीतिकाल हिंदी का बहुत ही सफल काल समझा जाएगा। कला जीवन के लिए अथवा कला कला के लिए, विषय पर आधुनिक समय में साहित्य जगत में गंभीर मंथन हुआ है। रीतिकाल की अधिकांश कविता का तत्कालीन बृहत्तर सामाजिक जीवन से कोई जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन के बीच लिखी कविता की मात्रा भी कम नहीं है। भक्तिकाल की कविता पर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ वह सामाजिक बराबरी की आकांक्षा के संकल्प के बावजूद पारलौकिकता, रहस्यकरण और ईश्वरवाद हावी है। रीतिकाल की कविता में पारलौकिकता, रहस्यकरण नहीं बल्कि सांसारिक जगत का यथार्थ है। जहां पारलौकिकता और भक्तिवाद का पुट है भी, तो यह जागतिक स्वार्थों को साधने के लिए है। हाँ, यथार्थ का फलक तथा उसके परिप्रेक्ष्य का संबंध सीमित वर्गों से है। भौतिक व लौकिक जगत के प्रश्नों को कविता में स्थापित करने को तो रीतिकाल की उपलब्धि माना ही जा सकता है। दोस्तों, आज हमने जाना रीतिकाल के सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश के बारे में। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा और उसके कवियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।